वहाँ कौन है? जिसके हृदय में धर्म है या जिसने धर्म को धारण कर लिया है वो धर्मात्मा है। अब धर्मात्मा का लक्षण क्या है? ये तो सामान्य रूप से उसका स्वरूप हो गया कि जिसके हृदय में धर्म है या जिसने धर्म को धारण कर लिया है वो धर्मात्मा है। तब फिर उस धर्मात्मा की पहचान क्या है? तो लिखा हुआ है कि जिसके हृदय में धर्म है वो अपने मारने वाले को भी बचाने का ही प्रयत्न करता है। जैसे दुर्जन के साथ भी जो अच्छा व्यवहार करे वो सज्जन, इसी तरह धर्मात्मा वो है या जिसके हृदय में धर्म है वो व्यक्ति कभी भी दूसरे का अहित नहीं करेगा, अहित करने का विचार तक नहीं करेगा, वाणी और शरीर के द्वारा भी किसी का अहित नहीं करेगा और मन में भी उसके दूसरे के अहित का विचार नहीं आएगा। वास्तव में तो धर्मात्मा वो है, पर सामान्य रूप से प्रचलित क्या है? जो जितनी अधिक धर्म की क्रियाएं करता है वो धर्मात्मा है। सुबह से पूजा करता है और फिर स्वाध्याय करता है, और स्वाध्याय तो कहो तीन तीन दफे करता हो, और फिर उसके बाद जो है रात में भोजन नहीं करता है, आलू भी नहीं खाता है, ऐसी बहुत सारी उसके नियम है तो वो, और फिर बाद में जब दुकान पर जाता है तो फिर वो कहता है कि देखो भाई धर्म तो मंदिर तक ही रखो, दुकान में तो वो दुकान में जैसा होता है वैसा करेंगे आप दुकान में। हम ऐसा थोड़ी है कि दो पैसे नहीं कमाएंगे क्या, तो थोड़ी बहुत बेईमानी भी करना पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, चोरी भी करना पड़ेगी, और मूर्छा के बिना तो परिग्रह इकट्ठा नहीं होता है, तो लिप्सा और ममत्व भी उसका उसके प्रति है, परिग्रह के प्रति, और उन सब के पीछे जो हिंसा है वो तो हो ही रही है, परिणाम अपने बिगाड़ रहा है तो हिंसा। अपन लोग जो है परिणाम बिगाड़ने को हिंसा मानते ही नहीं है। दूसरा कोई जीव मर जावे तो हिंसा, और परिणाम बिगड़े तो हिंसा नहीं। आपने अपने परिणाम बिगाड़े, दूसरे के परिणाम बिगाड़े, तो इसको क्या कहेंगे? ये हिंसा तो है। तो धर्मात्मा, धर्म क्रियाएं अकेले दोहरा लेने से कोई नहीं बनता है, धर्मात्मा तो वही बनता जो हृदय में अपने धर्म को धारण करता है। पर वर्तमान में प्रचलित तो यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो इन क्रियाओं को करता है वो धर्मात्मा नहीं है, वो भी धर्मात्मा है। व्यवहार से देखा जाए तो धार्मिक क्रियाएं धीरे धीरे उन धार्मिक क्रियाओं को करते करते उसके मन में और सचमुच हो सकता है कि धर्म आ जाए। जैसे हमने आपसे कहा था एक बार कि एक व्यक्ति जो है बहुत भूखा था, तीन चार रोज से एक उपाश्रय में पहुंच गया, वो वहां पर जो है जो साधु थे उनके लिए आहार इत्यादि मिलता था, उनका वो था उपाश्रय, जैसे स्थानकवासी लोगों के होता, और कुछ श्वेतांबरों में भी इस तरह की प्रक्रिया होती है, वो अपने उपाश्रय में बैठ के और फिर जो भी इकट्ठा लेके आते हैं गोचरी करके आहार वो वहां खाते हैं, तो उनके लिए था वो। उसने वहां मांगा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो साधु को मिलता है। उसने कहा मैं साधु बन जाऊं तो मुझे मिलेगा? उन्होंने कहा जरूर मिलेगा। तो वो साधु बन गया। काहे के लिए बन गया? कि मुझे खाना मिलेगा। अब जब खाना, उसने तो बहुत दिन से नहीं खाया था, और उसने जब खाना खाया तो खाते ही चला गया, पानी वानी उसने कमती पिया और आइडिया नहीं था उसको, तो बाद में दोपहर में जो है उसको पेट में दर्द होना शुरू हुआ और भीषण तकलीफ होना शुरू हुई। तो जो जितने और साधु थे वहां पर वे सब उसकी सेवा में आ गए, बड़े बड़े जो श्रावक सेठ लोग थे वो भी सेवा में हाथ पैर दबा रहे हैं, औषधि कर रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैं जो है एक दिन के लिए झूठ मूठ और साधु बना, तब तो इतनी मेरी सम्मान मिल रहा है, मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, और अगर मैं सचमुच साधु बन जाऊं तब तो फिर पारी हो जाऊंगा मैं तो। ऐसा उसके मन में विचार आया और उसने सोचा कि अगर इस रोग से मैं मुक्त हो जाऊंगा तो जरूर मैं सच्चा साधु बन जाऊंगा। और कहते हैं कि वो तो थोड़े माने दो चार घंटे के अंदर जो है वो उसका रोग का शमन हो गया, तो रोग का शमन हो गया तो उसने सचमुच फिर वो भगवान बन गया। मेरा कहने का आशय ये है कि कभी कभी जो है अपने मन में धर्म के प्रति उतनी रुचि नहीं भी होती है, या धर्म का जो वस्तु वास्तविक स्वरूप है वो अपने को नहीं भी मालूम होता है, फिर भी अपन बाह्य में धर्म की क्रियाएं करने लगते हैं, तो उन धार्मिक क्रियाओं के करते करते भी, और कभी संभव है कि हमारे भीतर जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है वो आ जावे। तो इस तरह अपन ने समझा कि तीन तरह से वास्तव में कौन है जो धर्म को हृदय में धारण करता है, या जिसका जीवन ही धर्ममय हो गया है वो धर्मात्मा। तो वास्तव में देखा जाए तो धर्मात्मा कौन कहलाएगा? सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान या पंच परमेष्ठी धर्मात्मा कहलाएंगे। और जो धर्म का आचरण कर रहा है उसको भी हम धर्मात्मा कहते हैं, और धार्मिक क्रियाएं दे रहा है उसको भी व्यवहार से हम धर्मात्मा कहते हैं। इस तरह धर्मात्मा की परिभाषा हुई भैया। क्या परिस्थितियां व्यक्ति को अच्छा बुरा बनाती हैं? ऐसा एकदम नहीं कह सकते। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, कोई भी कार्य होता है कर्म अपना फल देता है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही देता है। कैसा भी कर्म बंधा हो लेकिन जैसा द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा, भाव जैसे होंगे वैसा फल देगा। असाता वेदनी कर्म का उदय चारों गतियों के जीवों को है, लेकिन वो असाता वेदनी सभी को अलग अलग फल दे रहा है, और उस गति में भी अलग अलग जो जीव हैं उनको जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला होगा वैसा। भाव तो अपने आश्रित है, द्रव्य क्षेत्र काल तो जो है वो उसी को अपन परिस्थिति मानते हैं। सामान्य रूप से परिस्थिति क्या कहलाती? देश काल की सीमाएं, आप किस देश में रह रहे हैं और किस काल से गुजर रहे हैं। जैसे पंचम काल है अपन ऐसा मानते हैं, कलयुग कहलाता अच्छा नहीं है, इस समय जो है महान आत्माएं नहीं रहेंगी, उनका सानिध्य नहीं मिलेगा, अरहंत सिद्ध का सानिध्य नहीं मिलेगा अपने को, तो ये काल अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी जो है ऐसा नहीं है कि ये काल अच्छा नहीं माना जाता इसलिए हम इस काल में पाप ही पाप करें, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। धर्म करने के लिए तो फिर भी लिखा हुआ है, तो काल का उतना असर नहीं पड़ता। इसी तरह किस क्षेत्र में है, हम बंबई में हैं तो संभावना ज्यादा है कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं का आकर्षण ज्यादा रहेगा, और हम एक छोटी जगह है वहां हमारा भौतिक सुख सुविधा का कम साधन है तो उतने में ही हम संतोष कर लेंगे। अब ये बात अलग है कि दाम बिना निर्धन दुखी, ये भी ध्यान रखना। उसके साथ साथ कोई जरूरी नहीं है कि संपत्तिमान ही जो है सुख दुख का ज्यादा अनुभव करता हो, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी हो सकता है, संतुष्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसका आशय ये है कि हमारे परिणामों पर निर्भर करता है भैया। परिस्थितियां अगर हमारी मन स्थिति अच्छी हो तो परिस्थितियां हमें कुछ भी नहीं कर पाती, और अगर हमारी मन स्थिति ही गड़बड़ है तो कितनी अच्छी परिस्थिति हो है? मैं बैठे तो मंदिर में है और भाव अच्छे नहीं है तो मंदिर का कर ले हैं, ये बताओ हैं। इसी तरह से जो है भाव आपके अच्छे हैं और फंस गए हैं कहीं ऐसी जगह जहां की अच्छे लोग नहीं हैं, तब भी आपके भाव कोई बिगाड़ नहीं सकता जबरदस्ती। हमने कई बार ये चीज कही कि आप हमें गाली दे सकते हो, हमें गुस्सा तो नहीं दिला सकते, वो तो हम करो चाहे तो करें, नहीं करो चाहे तो नहीं करें, आप दे दो आप। इस तरह परिस्थितियां विपरीत होने पर भी हम अपनी मन स्थिति को संभाल सकते हैं, और मन स्थिति अगर अच्छी है तो एक व्यक्ति पहुंचा और उन्होंने कहा कि महाराज कोई मंत्र दे दो। अच्छा, काहे के लिए चाहिए मंत्र? तो उन्होंने कहा कि ताकि देवता लोग मेरे बस में हो जाएं। अच्छा, देवताओं को बस में करने के लिए मंत्र चाहिए? कह ले हां। तो पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नौकर तुम्हारे बस में है? कहते अरे वो तो बात ही नहीं मानता हमारी। अच्छा, तो फिर तुम्हारा जो लड़का है वो तो तुम्हारे वश में होगा? अरे महाराज उसकी तो कुछ पूछो ही मत, इतना बिगड़ गया है वो तो, वो भी हमारे वश में नहीं। अरे तो भाई जिससे तुमने विवाह किया तुम्हारी जीवन साथी तो तुम्हारी बात मानती होगी, वो तो वश में होगी। कहले महाराज अब ज्यादा नहीं को आओ हमसे। तो फिर महाराज ने कहा कि देखो देखो भाई, फिर हम तुमसे पूछते, तुम्हारा मन तो तुम्हारे वश में है? तो कहते महाराज मन भी बस में नहीं है। तो कहते फिर कौन मंत्र की आवश्यकता तुम्हें? जिसका मन वश में है उसके लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं, और जिसका मन वश में नहीं है उसको मंत्र कोई लाभ नहीं देगा। जैसे वल्मी जी कहा करते थे, भैया चारित्रवान हो गए तो हमारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बिना आशीर्वाद के भी कल्याण कर लेगा, और चारित्रहीन हो गए तो हमारे आशीर्वाद से भी उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज थोड़े से 10 मिनट हो गए आज। क्या जैन दर्शन नास्तिक है? क्या नास्तिक का अर्थ समझ लें अपन, तो फिर पता लग जाएगा कि जैन दर्शन नास्तिक है कि आस्तिक। पहले नास्तिक की परिभाषा क्या बनाई जाती थी? जो वेदों में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं, और जो वेदों में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। बाद को जो है बड़ा मुश्किल हुआ, कह रहे भाई वेद का अर्थ तो ज्ञान होता है। जब लोगों ने थोड़ा समझदार हुए तो फिर उन्होंने कहा कि विद धातु तो ज्ञान के अर्थ में है, तो हम तो केवल ज्ञान में विश्वास रखते हैं, आप तो छोटे मोटे ज्ञान में श्रुत ज्ञान में विश्वास रखते हैं, हम तो केवल ज्ञान में विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने फिर परिभाषा बदली कि नहीं भाई, जो आत्मा परमात्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, और जो आत्मा परमात्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। तब फिर जो है जैन दर्शन आस्तिक हुआ, और बौद्ध दर्शन भी आस्तिक की कोटि में आया। सिर्फ एक चार्वाक दर्शन है जो कि नास्तिक में चला गया, वो तो यही कहता है कि जीव नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो तो पांच भूत तत्व मिलते हैं उसी में से जीव उत्पन्न हो जाता है और नष्ट हो जाता है, वो आत्मा में विश्वास नहीं रखता, आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था परमात्मा अवस्था उसमें विश्वास नहीं रखता, पुनर्जन्म तो होते ही नहीं, कुतः पुनरागमो, पुनरागमन कहां होने वाला, इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमो कुतः, एक बार ये शरीर नष्ट हो गया तो फिर कहां मिलने वाला, इसलिए जित्तो बने सो घी पी लो, भले ही ऋण करना पड़े माने उधार लेने पड़े, मगर अच्छे से, मतलब उसका ये आशय है कि अच्छे से इस शरीर की सेवा कर लो, उसका आत्मविश्वास तो बहुत नास्तिक है। बाकी सब जो दर्शन है जैन दर्शन भी आस्तिक ही माना जाता भैया, आस्तिक और नास्तिक का तो बड़ा मजा है। जब अपन लोग किसी, मैं देखता हूं आज के समय में तो यही चीज देखने में आती है कि हर आदमी जो है जो वो करता है उसको तो ठीक मानता है, कोई दूसरा करता तो उससे गलत मानता। मैं सोचता हूं इसमें से आधा सही है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, लेकिन दूसरा जो कर रहा है वो अपनी दृष्टि से ठीक कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ऐसा क्यों अपन सोचें। लेकिन होता यही है कि हम जो करते हैं वो हम उसको सही मानते, दूसरे को गलत। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक आस्तिक था और एक नास्तिक था, तो गांव के लोग बड़े परेशान, कहने भैया तुम दो जने बैठ के और तय कर लो को सही है को गलत, हमारे बेकार परेशान हो, कछु तुम्हारी तरफ हो जाता कछु उनकी तरफ हो जाता, ऐसी दो दो पाली बन गई, तो तुम दोनों जन, तो वो दोनों बैठे, शास्त्रार्थ होना शुरू हुआ, पूरी रात शास्त्रार्थ चला, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि जो नास्तिक था वो बाजार में भगवान की मूर्तियां खरीद रहा था और मूर्ति लेके जा रहा था, और जो जो आस्तिक था वो जितनी अपने घर में मूर्ति उर्ति रखें तो सब पुटरियां बांधे और जा रहा हो तो गंगा में सिरावे। तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है, कहने कल नास्तिक ने ऐसे तर्क दिए कि मुझे भी लगने लगा कि इसमें कोई सार नहीं है, वही ठीक कह रहा है। और नास्तिक से पूछा कि तुम क्यों मूर्ति खरीद रहे, कहने कल वो जो आस्तिक था ना उसने इतने बढ़िया तर्क दिए कि मुझे भी लगा कि भगवान को मानना चाहिए। तो देखो आप, नास्तिक ने आस्तिक बन गया, नास्तिक नास्तिक, मगर फिर भी गांव में एक नास्तिक रुके एक नास्तिक रहा ही आया, फर्क नहीं पड़ा कुछ, थोड़ा बदल गया बस इतना। ये जो है अपने आप में जिसका विश्वास नहीं है वही डगमगा जाता है, और आत्मविश्वास है वो सब, जिसको आत्मा में विश्वास है वो आस्तिक है। अस्ति शब्द से राग द्वेष में अधिक हानिकारक कौन है, अधिक हानिकारक तो द्वेष है, स्पष्ट लिखा है, क्योंकि द्वेष के दो भेद नहीं होते, प्रशस्त और अप्रशस्त दो द्वेष नहीं होते, राग तो प्रशस्त और अप्रशस्त होता, विषयानुराग अप्रशस्त है, छोड़ने योग्य है, बिल्कुल सर्वथा हे है, लेकिन धर्मानुराग, धर्मानुराग से तो अपने जीवन में पवित्रता आती है, और पवित्रता के चलते हमें धर्म का वास्तविक स्वरूप ध्यान में आता है, और जो पतित व्यक्ति है जो कषायवान है अत्यंत तीव्र कषाय कर रहा है उसको तो धर्म की सुधी नहीं है, और जो थोड़ा मंद कषायी होगा वो धर्म की चार बात सुनेगा, हो सकता कि वस्तु स्वरूप उसको ठीक ठीक भासे तो फिर वो अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि राग में और द्वेष में सबसे खतरनाक तो द्वेष है, और फिर राग में भी विषयानुराग भी छोड़ने ही योग्य है, और धर्मानुराग भी जब तक हम अपने उस आत्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए तब तक धर्म से अनुराग रखेंगे, अपने आत्मा से अनुराग रखेंगे, फिर अपने आत्मा को ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उदाहरण तो मेरे ख्याल से यही उदाहरण आपको पर्याप्त है, किसी व्यक्ति से द्वेष रखिएगा तो बिना तीव्र कषाय के द्वेष नहीं हो सकता, ध्यान रखना, द्वेष में तीव्र कषाय होती है। राग रखेंगे आप, माँ का बेटे से प्रेम है तो कषाय तीव्र नहीं होगी, मंद कषाय रहेगी, आप खुद देख लो ना अनुभव में, अपन रोजमर्रा के धर्म भगवान के प्रति अनुराग, आप यहां काय को बैठे हुए हैं, आप आहार देने काय को भागे चले जाते हैं, कौन सी वजह से, अनुराग की वजह से, धर्मानुराग की वजह से मेरा अपना कल्याण होगा इस आशय से, या कि हमारे महाराज जी हैं, हमारे भगवान हैं, पहले तो यही भाव रहता हमारे तुम्हारे का, फिर बाद में धीरे धीरे जो है दृष्टि और विशुद्ध होती चली जाती है, तो मेरे आत्म कल्याण के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। तो इसलिए धर्मानुराग, जो चार प्रकार का अनुराग लिखा है, धर्मानुराग, भावानुराग, प्रेमानुराग या मित्रानुराग कहते हैं, और मध्यानुराग। पांडव आदिवत मध्यानुराग का उदाहरण दिया है, जैसे पांडवों का अनुराग था, जैसे जिसको अपन ब्लड रिलेशन बोलते हैं, वो एक सहज अनुराग है, वो जाता नहीं है। देखो नकुल और सहदेव दोनों को कितना सा विचार आ गया था कि ये तो हम तो अभी यंग हैं, युवा हैं, हम तो सहन कर लेंगे उपसर्ग, लेकिन ये भाई तो हमारे सब वृद्ध हो गए हैं और ये कैसे सहन करेंगे। उतने की वजह से जो है भले उनको सर्वार सिद्धि हुई, पर उदाहरण दिया है कि ये मध्यानुराग है। अरे धर्मानुराग की वजह से तो विष्णु कुमार मुनि महाराज ने जो है अपना पद छोड़ करके और 700 मुनियों की रक्षा करी, उस धर्मानुराग की वजह से ये धर्मानुराग कहलाता। और मित्रानुराग, मेरा मित्र है ये गलत रास्ते पर जा रहा है, मैं इसे कैसे अच्छे रास्ते पर लगाऊं, ऐसा बार बार जो विचार आता है वो कौन सा अनुराग, वो मित्रानुराग कहलाता है। अपने मित्र के आज के समय में ऐसा बहुत कठिन है, उसमें लिखा कल्याण मित्र बहुत साता वेदनी कर्म के उदय से मिलता है। राजवार्तिक में लिखा कि किसी को कल्याण मित्र मिल जाए, अर्थात निरंतर वो उसके कल्याण के का विचार करने करता रहे कि ये मेरा मित्र है, इसका कल्याण हो जाए, ऐसा तो बहुत बहुत पुण्य का उदय होगा, तो ही कल्याण मित्र मिलेगा। हाँ, कुछ बारीशैन और पुष्पडाल का उदाहरण महाराज ने जैसे कहा कि पुष्पडाल और बारीशैन दोनों मित्र थे और ये तय हुआ था कि तुम दीक्षा लोगे तो हम भी दीक्षा ले लेंगे, और दीक्षा ले ली, लेकिन पुष्पडाल के मन में थोड़ा सा आसक्ति घर के प्रति, गृहस्थी के प्रति रही आई। 12 साल तक तो साथ में रहे, फिर बारीशरण ने जो है उनको फिर स्थितिकरण किया, ये अपन सब लोग जानते हैं, वो है मित्रानुराग। ऐसे उदाहरण जो है 21वीं सदी का बालक कैसा होगा, ये वाली कविता सुनानी कृपा करें। अब वो ढूंढना पड़ेगी भाई, उसमें रखी हुई वो अगले वाले उसमें सुनाऊंगा। क्या सुख दुख का कारण अपनी अपनी दृष्टि है, वास्तव में तो यही है, कोई किसी को यहाँ सुखी दुखी नहीं करता है, लेकिन क्या करें, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके जीव जो है अनादिकाल से जो है किसी को इष्ट मान लेता है तो उससे सुखी होता है, किसी को अनिष्ट मान लेता है उससे दुख ले लेता है। बाकी सुख और दुख वस्तुओं में नहीं है, हमारे अपने परिणामों में है। हम चाहें तो, हमने आपको नहीं बताया था कि एक पिता अपने बेटे से परेशान था और बेटा अपने पिता से परेशान था, पिता ने जो है अपने मित्र से कहा कि हम तो बेटे से बड़े परेशान हैं, बातें नहीं मानता हमारी, हम जैसी कहें उसके उल्टे उल्टे चलता है। तो कहने लगा भाई समझाएंगे हम, तो बेटे से मिला कि भाई पिता की बात माना करे, तो उसने कहा कि चाचा पिता की बात मानो तो दिक्कत है, नहीं मानो तो दिक्कत है ही। कह लगा क्यों, क्या हुआ? कह लगा वो एक बार जो है हम नए कपड़े बनवाए, नए कपड़े बने थे तो हमने सोचा कि अब बने हैं तो पहनने के लिए बने हैं, तो हमने पहन लिए और पहन करके दुकान पर पहुंचे, सुबह चिल्लाने लगे वो, हो हमारे राज में बने ठने घूमो, जो ये खिलाने तो हैं सब, हमने इतने पैसा कमाओ है सो तुम बने ठने घूम रहे। सुकरले हमने सोचा कि भाई ठीक बात है, नए कपड़ा नहीं पहनेंगे अपन, पटरिया में भरे थे, हमने भी निकाले दे पहने, दूसरे दिन जो है पहन करके खराब कपड़ा गए, सुकरले देखो लजाव ने, अबे हम जिंदा हैं, हमारे एक तो अच्छे पहन लो, अब बताओ, अब अच्छे पहने थे सो कहते तो दिक्कत, खराब पहने तो दिक्कत। जिसको दुख निकाल नहीं है किसी चीज में से, वो तो कहीं ना कहीं से दुख निकाल ले, सुख में से भी दुख निकाल ले। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आप को कष्ट दान है, जिससे अपना कल्याण होता है उसको कष्टप्रद मालूम पड़ता और विषय कषाय उसको सुखजनक मालूम पड़ती है, भौतिक सुख।
घोड़ा कैसे किसे बनी, घोड़ा पे जा रहे थे
बाप, हाँ दो तो दोनों बैठ गए, तो उनने कही भैया इतना सा तो घोड़ा, तुम दो दो बैठे, सुनने की तो एक उतर जाओ, तो कहने लगे जी तो देखो भाई लड़का नीचे चलो जा रहा हो और बाप ऊपर बैठो, शर्म नहीं आई सो वो निकल गए और वो को ऊपर बैठा दो, लड़के को बैठा दिया। तीसरे व्यक्ति ने कही कहने लगे जी कैसा लड़का है, पिताजी इतने बूढ़े हो गए उनको पैदल चलवा रहा हो, खुद ऊपर बैठो। सो दो जनों ने सोची भैया दो ही ने बैठो, सो चले चलो पैदल ही, सो दो पैदल हो घोड़ा भी चले जा रहा। उन्होंने कहा कितने मूर्ख हैं, घोड़ा को घोड़ा लाओ बैठे कोई नहीं है, अब जब बैठे थे तब दिक्कत थी, नहीं बैठी तो दिक्कत। तो यही बात, ये घोड़े का उदाहरण महाराज को भी याद है। तो ये सुख दुख जो है ये जो है सही अपनी अपनी दृष्टि है, आप जैसा चाहेंगे। हाँ, विपत्ति से बढ़कर के अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय नहीं है। आचार्य महाराज के इस कथन का उदाहरण सहित समझाने की कृपा करिएगा। विपत्ति जब व्यक्ति के जीवन में आती है तब उसे वास्तव में सही सही अनुभव होता है। वो कहते हैं ना कि विपत्ति में परखिएगा मित्र को, और अपनी जीवन साथी को, और तीसरा कौन? हाँ, जीवन धर्म मित्र अरु नारी। हाँ, इन सब को विपत्ति के समय जो है परखने का है। विपत्ति में अनुभव हो जाता है कि कौन हमारा है और कौन पराया। हम जबरदस्ती जो है सब बनाए हुए थे कि ये हमारा है और ये हमारा है। जब विपत्ति आई तो कोई किसी का नहीं है। विपत्ति तो अपने झेले झेले ही कम होती है उसमें किसी, और विपत्ति भी आई है तो किसी दूसरे की वजह से नहीं आई है, मेरे अपने किसी कर्म की वजह से आई हुई है, ऐसा विचार करना उस समय, तब जो अनुभव होता है वो वास्तव में। हमने आपसे नहीं कहा था कि गढ़ाकोटा में जब हम 86 या 89 की बात है, जब वहाँ अस्वस्थ हुए, हाँ चतुर्मास के दौरान अस्वस्थ हो गए, तो फिर उस समय एक महाराज जी और थे, वो तो गुप्ती सागर जी थे, तो वो हाँ, तो वो संडे था तो प्रवचन करने चले गए। उनको कहा कि नहीं आप तो करो प्रवचन, और ब्रह्मचारी जी को भी कहा कि एक दिन तो सुनने मिलता, आप भी चले जाओ। मेरे पास कोई भी नहीं था उधर इतनी बड़ी परिक्रमा में, वहाँ उधर पटेलिया जी की। अब बुखार बढ़ना शुरू हुआ, तो बहुत अधिक बुखार बढ़ा, तो थोड़ी आकुलता तो होती, कोई भी कितने भी पहुंचा हुआ हो भैया, लेकिन थोड़ा तो लगता कि कोई हो तो पास में, तो कोई होता तो दो बातें कह लेते, क्या पता जीवन का कोई भरोसा नहीं, ऐसा जो है भाव आया। चिटाई से बाहर मुंह निकाला, वहां तो दूर दूर तक सन्नाटा था, कोई नहीं था, दूर उधर प्रवचन हो रहे थे। तब जो है पहली बार मुझे लगा कि अरे भाई, अपने सुख दुखों अकेले ही भोगना पड़ता, कोई किसी का नहीं है संसार। वैसे तो अपन घूक कर को नहीं है, जब बुराई हो जाए जब सब अकेले ही अकेले हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा अनुभव हो गया कि हाँ, अपने सुख दुख को देखो, कौन दूर कर सकता, अपना दुख अपने ही झेले झेले, उससे अनुभव हो गया। उसके बाद से ही हमने निर्णय लिया था कि अब जो है दोपहर में लेटेंगे नहीं। जब लोगों ने कहे कि आपकी इतनी तबीयत खराब है और आप लेटते नहीं हो, यही तो है, आप अपने हाथ से बिगाड़े हो। तो हमने कहा अब आप चाहे कचू कहो, कल जब बिगड़ गई थी तो कोई उन्होंने संभाल ली थी, हम ही कहो जो कचू करने से हम ही को करने, अब हमें आपकी नहीं सुनना, हमें जो करना है उस हिसाब से करेंगे। तो मैंने ऐसे अनुभव अपने आप विपत्ति आने पर हो जाते, फिर उसके अनुसार आदमी अपने जीवन को सच्ची दिशा दे देता है। सुखी बनने का उपाय क्या है भैया? जितनी निराकुलता हो सके उतनी निराकुलता रखो, सोई सुखी, आकुल आत्म को हित हित सुख सो सुख, आकुलता भी नहीं कहिए। और आकुलता का कारण क्या है? पंचेंद्रिय के विषय है, और पंचेंद्रिय के विषय तो नहीं है आकुलता का विशेष कारण, उनमें हमारी आशक्ति आकुलता का कारण है और कुछ नहीं। जितनी आप पंचेंद्रिय की विषय तो भगवान के सामने भी फैले हुए हैं, सारा समोषरण में क्या क्या नहीं है वहां पर, लेकिन भगवान चार अंगुल ऊपर उसके बैठे हुए हैं, अनाशक्त हैं। तो पंचेंद्रिय के विषयों से जितनी अनाशक्ति होगी, कहते हैं उतना अधिक जो है निराकुलता होगी और उतना ही सुख होगा, बस इतना।
आप इन सबसे यह पूछो,
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।